खा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे।
शांति। भगवान को कहा जाता है राजू रमजबाज, अर्थात किसी भी कार्य को बहुत युक्ति युक्त तरीके से करना या करवाना या किसी से निकलवाना। जैसे यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई तो शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों को बहुत बहलाया और कई सारे सपने दिखाए कि स्वर्ग आया कि आया, अगली दिवाली नहीं आएगी। अगर बाबा उस दिन उसी समय अगर कह देते कि यज्ञ तो अभी 100 साल चलना है तो शायद बच्चे हार्ट फेल हो जाते कि इतनी इतनी समस्याएं आएंगी, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इंसल्ट होगी, समाज उंगली उठाएगा, पिकेटिंग होगी, घरों में आपको सुनना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, हैं जी, सिंध से हैदराबाद छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, बहुत मुसीबतें सामने आएंगी, खाने को नहीं मिलेगा, तो शायद उसमें जी बैगरी पाल्ट आएगा। तो अगर पहले ही किसी का जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा है और उसको कह दिया जाए कि ये मुश्किल अचीव करना है और इसको बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कौन से खेत की मूली हो, तो पहले से डिसाइडेड हो जाएगा कोई। लेकिन बाबा राजू रमजबाज है, युक्तियुक्त तरीके से हम इस पुरुषार्थ के मार्ग पर कैसे सहज अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हुए दिन प्रतिदिन हमें आगे ले जाते रहते हैं। इतना लंबा सफर यज्ञ का है, आज भी यज्ञ के आदि रत्न हैं, आज भी उनमें वो उमंग उत्साह बरकरार है, आज भी उनमें वो प्रसाद की कसक है, लगन है, तड़फ है अभी भी। तो अनेक प्रकार की युक्तियां रच के बाबा ने कैसे यज्ञ को इतना लंबा समय तक चलाया। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन जहां लगन है, जैसे कल के प्रश्न उत्तर में था, जहां लगन है वहां विघ्न ठहर नहीं सकते। अनेक प्रकार की युक्तियां निकल आती हैं। तो आज का जो विषय है, पुरुषार्थ में हाल्ट फेल होने के कारण क्या हैं और कैसे उनका निवारण करना है। हार्ट फेल अर्थात मृत्यु, अगर फेल हो जाए तो हाँ, उससे अगर थोड़ा झटका लगे तो बचा भी जा सकता है अगर समय पर उसका उपचार किया जाए। तो ब्राह्मण जीवन में हार्ट फेल हम कहां कहां होते हैं। हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त, जैसे मुरली में बाबा ने एक दफा कहा था दिल होल, कुछ दिन पहले ही मुरली थी, शायद महीना डेढ़ महीना पहले, कि बच्चे दिल होल हो जाते हैं, दिल में छेद हो जाता है। जैसे हार्ट फेल होने की निशानी जो होती हैं, मरीज को जब हार्ट फेल होता है तो उसके कई सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जिसके कारण उनका हार्ट फेल होता है। जैसे बीपी हाई जो हो जाता है तब हार्ट फेल होने की संभावना रहती है, लो हो जाता है तब भी होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जिसको कहते हैं, तो भी हो जाता है। अचानक कोई ऐसा समाचार, ऐसी खबर मिलती है जो बहुत आघात पहुंच जाता है जिससे भी दिल को, जिससे हमारा बहुत प्यार है, लंबे समय से हम जिससे रहे हुए हैं, या अचानक ही थोड़ा समय हम पहले उससे मिले हैं, जस्ट थोड़ा समय पहले, अगर कोई बता दे आगे वो तो फिर ही छोड़ दिया, तो भी सुनने वाला भी हार्ट फेल हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के हार्ट फेल होने के कारण होते हैं, ज्यादा मोटापा होता है या डायबिटीज होती है, तो अनेक प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसी तरह से ब्राह्मण जीवन में भी चलते चलते अगर पुरुषार्थ में हम हार्ट फेल होते हैं तो उसके भी कई कारण हैं। जैसे बताया ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, उसी तरह से अगर यहाँ पुरुषार्थ का प्रेशर भी ठीक से नहीं है तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। और दिल शिकस्त होने के भी और भी कई कारण हैं। जैसे बताया मोटापा होता है, यहां भी कौन सा मोटापा है, व्यर्थ का मोटापा है, व्यर्थ का बोझ है, व्यर्थ संकल्पों का बोझ हमने अपने मन पर रखा हुआ है, तो भी हार्ट फेल होने की संभावना बनी रहती है। तो कैसे सदा उमंग सा रहे, हार्ट फेल ना हो, उसके लिए हम कुछ देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, ब्राह्मण हार्ट फेल कहां होते हैं, जहां असफलता होती है, सफलता नहीं मिलती है, तो हार्ट फेल हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता ना, असफलता भी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहां उसमें कौन सी कमी रहेगी उसकी जांच करो और आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं ये परिस्थितियां भी तुम्हें परिपक्व बनाने आती हैं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। असफलता से कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, असफलता भी हमको नए नए रास्ते दिखाने के लिए मजबूत करती है कि कौन सी ऐसे असफलता होने के कारण रहे हैं जिनके कारण हमको इन चीजों का सामना करना पड़ा। तो हमारा जीवन पहले से बदल जाता है, हम पहले जैसे नहीं रहते हैं, असफलता से भी हमको बहुत पाठ पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो अनेक प्रकार के पुरुषार्थ के मार्ग पर अगर हम चलते, हमें चाहे सेवाओं के क्षेत्र में असफलता मिलती है, चाहे कोई नौकरी धंधे में है, पुरुषार्थ में है, तो हमको ठहर नहीं जाना। जैसे बाबा कहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कल की मुरली में था, क्रिमिनल हैं। अब हम सोचे भाई एक ही मुरली सुन के हमारी आंखें कंट्रोल हो गई, तो वो तो बड़े लंबे समय की साधना है। हाँ, दृढ़ता उतनी अगर है हमारे मन में, उस ज्ञान को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है तो संभव भी है वो। लेकिन फिर भी अनेक जन्मों के संस्कार हमारे अंदर हैं, आंखें क्रिमिनल है, बड़े धोखेबाज हैं। बाबा ने कहा अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, उससे पहले अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। उन आंखों को शीतल बनाने के लिए लंबे समय की साधना का बल चाहिए, ऐसे थोड़ी नहीं एक बार सुन लिया तो हो जाएगा, उसमें बहुत साधना चाहिए। उस ज्ञान को हमको समझना है, आंखें क्रिमिनल होने के कारण को समझना है कि क्यों क्रिमिनल होती हैं, अर्थात हमने स्वयं की वास्तविकता को नहीं समझा है, स्वयं को रियलाइज नहीं किया है। हम देह की दुनिया में फंसे हुए हैं या देह के संबंधों के बारे में हमारा चिंतन चल रहा है, इसलिए आंखें बार बार क्रिमिनल होती हैं, या हमारे जो पिछले संस्कार हैं उन्हीं संस्कारों का चिंतन चल रहा है, उन्हीं संस्कारों को हम पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए आंखें चंचल होती है। जो देह के अंदर छिपी हुई मणि है, जिसके अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, उनके बारे में हमारा चिंतन नहीं चल रहा है तो हमारी आंखें क्रिमिनल होती हैं। तो एक ही पॉइंट है, बाबा तो बोल के चले जाते हैं, अब सारा दिन उसके ऊपर काम करना हमारा फर्ज होता है, हमारा कर्तव्य होता है। अगर हम मुरली सुन लेते हैं और उस पर हम काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, असफलता मिलेगी और असफलता के कारण फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते चिंतन करो, अच्छे अच्छे बच्चे विचार सागर मंथन करेंगे कि सर्विस कैसे बढ़े, कल की मुरली में था ना, तो विचार सागर मंथन करने की आंखें क्रिमिनल होती हैं तो हमको केवल सुन के नहीं, कि बाबा ने बोला कि आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, केवल उतना याद कर लिया, लेकिन क्रिमिनल क्यों होती है उस पर भी तो चिंतन करना पड़ेगा ना, ताकि उस पर अंकुश लगाया जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। तो उसको चिंतन करेंगे, उस पर हम थोड़ा नजर दौड़ाएंगे, उसके बारे में गहराई से सोचेंगे, इससे हमको क्या दुख होता है, इस इतने लंबे समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं और क्यों आंखें शीतल नहीं हो रही हैं, क्यों चलायमान होती हैं, क्यों कर्मेंद्रियां शीतल नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे अपने कुछ ऐसे कारण रहे हैं या होते हैं जिनके कारण हम बार बार धोखा खाते हैं, असफलता होती है। तो पहली बात है असफलता होती है कि कहाँ कहाँ असफलता होती है और उस असफलता से हम हार जाते हैं, माना दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो असफलता से हमको हारना नहीं है बल्कि वहां अपने को जांच करनी है, रुकना वहां, उससे भी सीखना कुछ। असफलता है कोई बात नहीं, उसको स्वीकार कर लेना है, लेकिन उसकी जांच करके फिर आगे बढ़ने के रास्ते हमको तलाशने हैं। तो पहली बात है असफलता। फिर असफलता क्यों होती है, अपेक्षाएं रखते हैं या तो दूसरे से। जब किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो पूर्ण नहीं होती हैं तो भी क्या होता है, दिल शिकस्त होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इनसे अपेक्षा रखी है कि इनको मैंने कहा कि आप ये काम कर देना और इन्होंने किया नहीं, तो भी क्या होता है, तो भी वैसे होगा, तो भी मन में संकल्प चलने लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि जरूरी कि हर कोई हमारे अनुसार ही चले, सबकी दिनचर्या अपनी अपनी होती है। जैसे कुछ दिन हम पहले बताएं तो एक कोई कोरोना पेशेंट थे इधर, तो हमको उन्होंने बोला कि आप मुझे हेल्प करना, भाई मैं तो कमरे में क्वारंटाइन होगा तो आप मुझे, मैं बोला ठीक है, मैंने आप अपना नंबर दे दिया उनको कि आप मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब उन्होंने फोन किया ही नहीं और हम नहीं आए, भाई बिना कोरोना पेशेंट माना दूरी बना के रखनी, सीधी सी बात है। अगर आपको जरूरी है कोई चीज जब भी आप फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। तो अब उन्होंने फोन नहीं किया और मैं गया नहीं, तीन चार दिन हुए। फिर तीन चार दिन के बाद वो पॉजिटिव आ गए, उनको नीचे जाना था, तो फिर वो बोले, वो थोड़ा अग्रेसिव टाइप हो गए, ऐसे व्यवहारिकता उनको दर्शाई गई जैसे उनके चेहरे से मुझे दिखा। तो फिर बोला आप तो आए नहीं, मैं बोला आपने फोन किया ही नहीं अपने को, तो माना उनके बोल से थोड़ा अग्रेसिव भाव था। तो अगले दिन में खुद ही कहा उन्होंने कि मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने खुद ही फोन नहीं किया है। और दूसरी बात, आपकी अपनी भी समस्याएं हो सकती हैं, आप जिस डिपार्टमेंट सेवा करते हैं तो हमको पता नहीं अब इनको कौन कौन सी सेवाएं दी हुई हैं, हमने तो ये देखा कि ये तो ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर में, उनके डिपार्टमेंट में या उनके आसपास में कौन कौन सी सेवाएं चल रही हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन बाहर से कई दफा हम देखते हैं कि ये तो ऐसे बैठे रहते हैं। कई बार है, ये भी होता है, हम कटाक्ष के बोल देते हैं कि काम धाम तो है नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। अब मन से अंदर में पता नहीं कौन सी मनसा सेवा सामने वाला कर रहा है जो हमसे नहीं हो पा रही है, और हम चलते चलते किसी को टोंट मार देते हैं तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं, कटाक्ष वाले बोल बोल देते हैं तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो हमारे जो मन के अंदर कुछ ऐसे अनावश्यक अपेक्षाएं हैं, अनावश्यक या अनचाही या जिसको कहें जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चलते चलते ऐसे किसी से अपेक्षा रख लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, सारहीन है, तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो अपेक्षाएं हैं वो भी हमको ये देखना है कहां किसे कौन सी अपेक्षा कब रखनी चाहिए जिसमें सबका कल्याण समाहित हो। स्वार्थ के अर्थ स्व के अर्थ अपेक्षा नहीं रखनी है, जिसमें सबका ही कल्याण, सर्वजन हिताय कहा जाता है, सर्वजन सुखाय। तो इस तरह की अपेक्षा हो, अभिलाषाएं हो। अगर हमारी अभिलाषाएं जो हद की हैं, स्वार्थ की हैं, वो पूरी नहीं होती है तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर तीसरी बात है अवज्ञाएं। हम बाबा की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिताएं हैं, नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनका भी पालन अगर नहीं करते हैं तो भी क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार की आज्ञाएं बाबा की मिली है, श्रीमत मिली है, तो बार बार हम श्रीमत पर चलने के बजाय उन पर नहीं चल पा रहे हैं या दिशा विपरीत जा रही है, हम धोखा खा रहे हैं, उल्लंघन हो रहे हैं उनका, अवज्ञाएं कर रहे हैं, तो भी क्या होता है, तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। हालांकि बाबा की हेल्प नहीं मिलती है, टचिंग नहीं होती, लाइन क्लियर नहीं होती। जैसे लास्ट संडे की बताया ना, लास्ट में कौन सी दो बातें थी, बुद्धि की लाइन क्लियर, टचिंग और कैचिंग पावर, वो नहीं होती है क्योंकि हम बार बार उल्लंघन करें, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ही उस रास्ते पर चलने की बन गई है। और उसी तरह के हम आसपास ऐसे ढूंढेंगे जिस कारण हमारी अवज्ञाएं स्वतः हो जाती हैं, उल्लंघन हो जाते हैं। सहयोगी साथी ढूंढेंगे, उनके कारण हमारा जो पुरुषार्थ है वो फिर विपरीत दिशा में चला जाता है। तो बाबा की मदद कहां से मिलेगी, साकार माध्यम, किसी को आधार बना लेते हैं, आधार फिर वो टूटने लगते हैं, क्योंकि योग हमारे लिए कोई करने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। पर स्वयं को पावन बनाने के लिए या स्वयं अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए वो तो खुद को ही बीसों नाखूनों का जोर लगाना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। उसके लिए बाबा भी हमारे लिए मदद करेगा, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा, अपनी गोर तो नशा चढ़े। मुख में अगर भोजन कोई डाल भी दे, पचाना तो हमको पड़ेगा, खाना तो अपने को पड़ेगा, चबाना ही पड़ेगा, वो अपने हाजमे को ठीक रखना पड़ेगा। आज के लिक्विड भी होता है, लेकिन वो अंदर भी सिस्टम काम करे तभी तो लिक्विड काम करेगा, अंदर का सिस्टम डेड हो जाए तो लिक्विड भी किस काम का। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर, अनेक प्रकार का जो कहते तबाटु मौत, गरम गरम भोजन। अब भोजन तो गर्म गर्म है, लेकिन खाने की ताकत ही नहीं, तो वो गर्म भोजन भी क्या काम करेगा। तो अनेक प्रकार की अवज्ञाएं हमारे से हो जाती हैं तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, असफलता होती है, आधार जो हिलने लगते हैं, जिसको हमने आधार बना के रखा हुआ है कि ये व्यक्ति समय पर हमको काम में आएगा, इसे हमको बना के रखना चाहिए, उससे आगे पीछे घूमना चाहिए। क्वारंटाइन में बहुत कुछ सिखा दिया, क्वारंटाइन का बहुतों ने फायदा भी लिया उसका, है ना, हमने तो देखा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, मनोबल बहुत मजबूत होना चाहिए। हमने मधुबन में देखा है कई ऐसे भाई बहने हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मनोबल बहुत मजबूत है उनका। वो सामने प्रत्यक्ष द्वार ने चलना नहीं होता है, लेकिन फिर भी 3:30 बजे उनको उठ के चढ़े हुए हैं। कौन से? हमारे कुमद बहन जी, मानना पड़ेगा उनका। 2 बजे निकल जाते हैं और रात को भी उदास, ऐसा नहीं जल्दी सो जाएंगे, गुड नाइट करके जाते हैं उधर से। कितनी बड़ी बात है। अब यहां सवेरे सवेरे बहुत पहले बिमला माता जी आते थे, उनको चलने नहीं होता है, लेकिन यहां तक क्लास में पहुंच जाते थे। तो माना कितनी तड़फ है, एक मनोबल है, एक सारी स्थिति मन की है। उन आत्माओं को जैसे शरीर से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, वो शरीर को देखते नहीं है। अगर उन्होंने अपने शरीर को देखना शुरू किया होता तो वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। वो तो कितना मनोबल है उनके अंदर, उससे पता पड़ता है कि दिल शिकस्त तो उनके पास भी नहीं फटकता है। अभी भी कितना उमंग उत्साह है, अभी भी अगर खड़े होंगे तो छोड़ के सीधा सल्यूट मार देंगे वो अटेंशन। तो कुमद बहन, डॉक्टर कुमद, तो देखो, अच्छा है जी, चल नहीं पाते हैं फिर भी वो देखो कितना है, क्लास कराने बैठ जाएंगे। योग करा दे, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, कितनी एज होगी उनकी, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह कितना है, उमंग उत्साह का प्रश्न कितना है। ना केवल स्वयं, दूसरों को भी जैसे मरे हुए में भी जान डाल देते हैं, वो कितना उमंग उत्साह भर देते हैं। तो तीन घंटे बताइए, कम बात है। इस एज में भी 3 घंटे बैठना कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो मनोबल बहुत बड़ी चीज है। हमारा मन अर्थात वो मनोबल आत्मा के इर्द गिर्द ही, आत्मा से संबंधित ही या बाबा के ज्ञान से संबंधित ही चिंतन में लगा हुआ है मन, तभी तो मन में उतनी शक्ति का संचार हुआ, ऊर्जा भरी, ताकत भरी है। अगर हम शरीर के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा, सारे दिन में तो शाम तक उठ भी नहीं पाएंगे। बताइए 3 घंटे मुरली पढ़ ली, कितनी बड़ी बात है वो भी। और हाँ, लिख भी रहे हैं। और जो पुरुषार्थ से थोड़ा किनारे रहते हैं, पुरुषार्थ से परहेज करते हैं, तो मुरली काम चलाओ पूरा कर देते हैं। कम मुरली जैसे अच्छा होगा तो बड़ी राहत मिलेगी, जैसे बहुत बड़ा काम पूरा कर दिया। लेकिन मुरली का काम तो मुरली सुनने के बाद शुरू होता है, सुनने तक नहीं, सुनने के बाद मुरली का काम शुरू होता है कि सारे दिन में हमने उसका थोड़ा बहुत अप्लाई किया कि नहीं है। तो ये है कि मनोबल हमारा बहुत मजबूत चाहिए। तो मनोबल कम होता है तो हम दिल शिकस्त होते हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दिल शिकस्त होते हैं, असफलता होती है तो दिल शिकस्त होते हैं, हाँ फिर कभी कभी बीमारी आक्रमण करती है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं ये बीमारी भगवान का बनने के बाद ही मुझे क्यों आ रही है? है जो लोग काम खराब कर रहे हैं संसार में वो ठीक ठाक घूम रहे हैं और हम भगवान के बन गए हैं तो बीमारी आ रही है। और लोग फिर कटाक्ष भी करते हैं संसार में ऐसे कि आप तो हम बोलते हैं हमको भगवान मिल गया है और आपकी क्या दुर्दशा होगी भगवान मिलने के बाद। तो भगवान का मिलने के बाद तो बाबा ने तो बोला है अगर आपको विघ्न नहीं आ रहे अर्थात आपकी लगन नहीं है, माना आपने आपका पुरुषार्थ ठीक नहीं है, अगर आपको विघ्न नहीं आ रहे हैं तो आपका पुरुषार्थ ठीक नहीं है, विघ्न आ रहे हैं तो पुरुषार्थ ठीक है। तो बीमारियां भी आक्रमण कर देती हैं। तो अगर लंबे समय से हमने आत्म अनिश्चिति का अभ्यास किया है, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास किया है, तो हम अपनी बीमारियों को ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। मधुबन में हम देखते ना कई भाई बहने ऐसे हैं वो बीमारियों का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान का मनन चिंतन सुनाते हैं। जैसे हमने संजय भाई को देखा था, अब संजय भाई आंगन में पैरा करते थे लेकिन उनके हाथ में मुरली हम कभी कभी देखते थे, लेकिन जब वो बीमार हुए ग्लोबल हॉस्पिटल, जब उनको कैंसर था, शरीर छोड़ना था, उनके मुख से ज्ञान के सिवाय कुछ निकलता नहीं था। तो अंदर में, सामने तो हमको कम दिखाई दिया लेकिन अंदर में कितनी उन्होंने स्टडी की होगी ज्ञान की। ऐसे एक एक ब्राह्मण आत्माएं गुप्त रूप से जो पुरुषार्थ करती हैं, अंत में हमारे मुख से तो वही निकलेगा। तो ऐसे ही लंबे समय से जो हमने अभ्यास किया है वो हमारी बीमारियों को भी बीमार कर देगा, बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, शफा मिल जाएगा, क्योंकि यहां ज्ञान में ताकत है, बल है, शक्ति है। तो उस ज्ञान के बल के आधार से आत्मा शरीर से डिटैच होना आसान हो जाएगा। जैसे हम देह से कपड़े कैसे उतार देते हैं, ऐसे आत्मा देह को भूल जाएगी। लंबे समय से अगर हमने देह की शुद्ध बुद्ध भूलने का अभ्यास किया है तो नेचुरली है उसमें पर काम आएगा। तो इस शरीर को भी नहीं भूल पाते हैं तो हम दिल शिकस्त होते हैं। तो शरीर से भूलने का भी हमको अभ्यास करना है, देह से डिटैच, देह के संबंधों से, है ना। 1982 या 82 की शायद मुरलियां त्याग के ऊपर चली हैं, उसमें सारा त्याग किस किस चीज से करना है, बड़ा सूक्ष्म चीजें, 7 बातें बताई हैं उसमें, देह के संबंध, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वैभव, 7 मुरलियां हैं, 7 दिन का कोर्स है वो भी, उसको कहा जाता है। तो इस तरह से देह से भी हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि हम समय आने पर बीमारी से भी मुक्त हो सकें। तो और जब और दिलचस्प कब होते हैं, जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, जब हम दूसरों को देखने लग जाते हैं कि ये सामने वाला तो इतने साल से ज्ञान में चल रहा है और इसको भूलने का भी अकल नहीं है बिल्कुल भी, ये हमसे कैसे बोल रहा है, ये सामने वाला तो सुना रहा था कि ये मम्मा ऐसे करते थे, दादी ऐसे करती थी, मम्मा ने किसी को तू नहीं कहा, और ये खुद तो तू कह रहा है, तो सुना तो रहा लेकिन खुद तो अप्लाई नहीं किया है। लेकिन वो हमें तो सुना रहा ना, कम से कम हम तो अप्लाई कर सकते हैं ना, तो उसका सुनाने में भी जमा हो रहा है कम से कम, तो हमको तो मिल रहा कि अभी भी हमारा आगे जाने का चांस है, तो हम दूसरों को ये देखते हैं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमको परिपक्व बनाने के लिए सुना रहा है, हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ कटाक्ष कर रहा है। तो हम ड्रामा को यथार्थ, उसके जो अनेक प्रकार के राज है, उसके गुही रहस्य हैं, जब उनको भूल जाते हैं तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो हम हार्ट फेल हो जाते हैं, दिल होल हो जाते हैं। कि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट में जा रही है, और वो ही होना चाहिए। जैसे रात को भी क्लास में बताया था कि ड्रामा में जो निश्चित है वो तो होना ही है, लेकिन उसका हमको मजा लेना है, उसको हमको साक्षी होकर देखना है, अपने को भी और दूसरों को भी, क्यों क्या करते हैं, ये ऐसे करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरों की कमियों को देखने की आदत बना लेते हैं, तो वो कमियां दूसरे की नहीं रहती हैं, फिर वो दूसरे की खत्म हो जाती है, वो कमियां हमारी अपनी हो जाती है। फिर सारा दिन हम उसका चिंतन करते रहेंगे, और उसी बात को अगर 10 लोगों से बता दिए तो 10 गुना होकर वापस हमारे पास और ही पक्की होगी काम, 1000 गुना दंड पड़ेगा। हाँ, तो 1000 गुना दंड पड़ जाएगा। तो इसी तरह से कमी कमजोरियां दूसरे की नहीं रहती, बल्कि वो अपनी बन जाती है। और फिर होता है कि अगर वो हमको आदत पड़ गई तो जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा तो वो उसको वो उसकी विशेषता नहीं दिखेंगी, उसकी कमियां दिखेंगी। तो हमको दूसरे की कमी कमजोरियां देखते हैं कि इतने साथ साथ चल रहे हैं, ये कहते हैं हमको भगवान मिला है और जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। हाँ, कोई अगर हमारी कमियां बताए तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कोई टोंट मारे तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। और दिल शिकस्त कहाँ होते हैं? हाँ, अचानक कोई प्राकृतिक आपदाएं आ देती हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। जैसे अचानक की कोरोना वाली बीमारी भी थी, उसी तरह कही ना, अचानक आई, अचानक किसी की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन हमको ये देखना है केवल हमारे साथ ही घटित थोड़ा हो रहा है। हाँ जी, गई 25 करोड़ लोगों की एक आंशिक तौर पर अनुमान के अनुसार, तो संभव जा सकती है, क्योंकि बाबा ने तो हमको पहले हर बात के लिए सुझाग करके रखा हुआ है, सचेत करके रखा हुआ है। तो जानने के बाद भी अगर हम उस पर उस पट्टे से नीचे उतर जाएं, ड्रामा के रहस्य से नीचे चले जाएं, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बीमारी आक्रमण कर सकती है, नौकरी जा सकती है, फिर घर में लौकिक में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो एकदम हाईटेक हैं। आजकल जो बच्चे हैं सुनाने से कम सुनते हैं, लेकिन वो हमारी चाल चलन को देखते हैं तो समझते हैं, प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा में उतनी ताकत नहीं है। वो चलने के लिए बाबा ने कहा तुमको पंख लगाने पड़ेंगे मोंगत्सा के। तो हम खुद ही अपनी परिस्थितियों में उलझे रहेंगे, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहेंगे, अपने उमंग सा के प्रेशर को कम करेंगे, हार्ट फेल होंगे, दिल शिकस्त रहेंगे, उदास रहेंगे, कोई जीवन में खुशी नहीं है, तो परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो हमको ड्रामा की यथार्थ की ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, और कितना सुंदर ड्रामा बना हुआ है सचमुच, उसको अगर हम साक्षी होकर देखें तो क्या भगवान ऊपर बैठ के तो हर आत्मा की ड्रामा को तो जानता है ना, कि बच्चों का भविष्य बड़ा श्रेष्ठ है। हाँ जी, हाँ, एवरी सेकंड न्यू है, उस दिन बताया ना मुरली में, भले ओवर रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी एवरी सेकंड न्यू है। क्यों? क्योंकि हमको तो पता नहीं अगले सेकंड क्या होने वाला है, इसलिए न्यू है। हाँ, मोटे तौर पर तो पता है कि मौत सिर पर खड़ा है। हाँ, क्योंकि उसको यह भी पता कि इसके जो पीछे सीन है वो कल्याणकारी है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, इसलिए उसको पता है कि अभी नई दुनिया के नजारे सामने दिखाई देने वाले हैं। हाँ, सबका पार्ट जानते हुए फिर भी कहते नहीं, क्योंकि ड्रामा में नोंद नहीं है उसका, नहीं तो उसको क्यूरियोसिटी नहीं होती है। जैसे क्या होता है, कई बार अगर कोई फिल्म देखता है, ड्रामा देखता है, जिस व्यक्ति ने फिल्म देखी होती है तो उसको रहता है, हाँ वो बताएगा बार बार दूसरों को, आगे ये होने वाला, आगे होना, रुक नहीं पाता है वो, लेकिन बाबा नहीं बताता है। वो बताएगा आगे एक्टर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है बाबा को तो सब पता है ना, क्योंकि बाबा को पता है कि ये बच्चे मेरे कलपल विजयी हैं, इनके सिर के ऊपर ताज है। बाबा ने कल बताया ना, मेरे टाइटल की टोपी दूसरों ने पहन ली है, कल बताया था ना। तो ऐसे बाबा को तो हमारे बारे में पता है ना कि ये बच्चे भविष्य का आधार हैं, है ना। तो 29 तारीख की मुरली थी, 29 सितंबर की, कि भविष्य राजधानी स्थापन हो रही है और वो होनी है, इसमें तुमको हार्ट फेल नहीं होना है। उस मुरली में था ये पॉइंट। तो इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। आज इतना ना कि तुम्हें सारे संसार को परिस्थान बनाना है। अब बताइए परिस्थान, एक एक को परिस्थान नहीं बनाना है। हाँ, बाप ने आपको हाथ दिया, आपका कर्तव्य औरों को हाथ देना, उस पार ले जाना है, वो खिवैया है। तो अब बताओ 1936 में बाप ने बोला तुम्हें सारे संसार का कल्याण करना है। हाँ, घेराव डालो। तो एक एक आत्मा को परिस्थान नहीं बनाना है, कितना बड़ा काम है। तो अगर हम उसको केवल उन शब्दों को पकड़ लेंगे तो सिर पर हाथ रख के बह जाएंगे कि सारे संसार को परेशानी कैसे बनाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को निश्चय है, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो इस काम के लिए भूल गए, भगवान ने कहा तो क्यों नहीं होगा। तो दूसरा एक कारण दिलचस्प होने का, संशय बुद्धि, कहीं ना कहीं संशय हो जाता है। एक बाबा के ऊपर भी हो जाएगा, स्वयं के ऊपर भी संशय हो जाएगा, परिवार के ऊपर संशय हो सकता है, ज्ञान के ऊपर संशय हो सकता है, ड्रामा के ऊपर संशय हो सकता है कि ड्रामा ऐसे कैसे हो सकता है। तो अनेक प्रकार के संशय होने के कारण भी हम कहीं ना कहीं डिसहार्टेड होते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, कमजोरियां, अपनी कमजोरियों के जाल में उलझे रहते हैं। पुराने संस्कार हैं जो हमको हार्ट फेल कर देते हैं। हाँ, कमजोर संकल्प पहले से फीड कर दिया, ये तो मेरे से होगा नहीं। अच्छा, दो चार लोगों ने और भी कह दिया, ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो, और ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, आपके बस की बात नहीं है, बहुत आए करके चले गए, देखा चले गए यहां से, तुम कैसे कर पाओगे इधर। तो ये जीवन में आती हैं छोटी मोटी बातें, लेकिन जिसने सिर पर कफन बांध लिया है, करना ही है, मंजिल पर पहुंचना ही है, तो उसके सामने कुछ भी बात आ जाए, कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, लेकिन वो सेकंड में क्रॉस कर लेगा उस, क्योंकि कहा जाता है जिसका साथी भगवान उसको क्या करेगा तूफान। तो अपने हम दिल में दिलाराम बाप को बसा के रखेंगे तो हमारा दिल बहुत सुरक्षित रहेगा। कौन सा दिल? ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ का दिल, जहां हार्ट फेल नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते सच्चे दिल पर साध राज, कहीं ना कहीं हम बाबा से अगर सच्चाई सफाई के साथ प्रस्तुत नहीं होते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हमारी अपनी कमियां खाती रहती हैं। दिल शिकस्त का होने का कारण यही भी है कि हम सुना तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमी कमजोरी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बाबा ने कहता ना, बाबा ने कई बार कहा है कि कोई एक ही कमी होती है विशेष, जिसके कारण पुरुषार्थ नहीं होता है। हर आत्मा में कोई एक ही कमी होगी जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जिसने हमारे पुरुषार्थ को रोके रखा हुआ है। तो उस कमी को ढूंढना और उसको निकालने का पुरुषार्थ करना। माया पूरा घुंसा मार देती है, माया गला घोंट देती है, क्या क्या करती है माया, बहुत कुछ कर देती है, कच्चा खा देती है, निकल जाती है। तो बार बार माया से हम धोखा खा जाते हैं, हमारे मन के कमजोर संकल्पों की रचना तो माया है, तो भी हम दिल शिकस्त होते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। तो हमको भी उसमें अच्छे अच्छे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। जैसे बताया ना संडे के मूल्य में कि मनसा सेवा के लिए भी शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए, खजाना चाहिए। वो आने वाले कल के संडे के मूल्य में आएगा कि अभी खजानों को कार्य में लगाओ, चेक करो कौन कौन से खजाने हैं। खुशी का खजाना है, शांति का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, सहयोग का खजाना है। तो अनेक प्रकार के बाबा ने खजाने जो दिए हैं, उन खजानों को हम, जो भी हमको प्राप्ति हुई है, उन प्राप्तियों को हम भूल जाते हैं तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। जैसे कोई साहूकार है, उसके पास पैसा बहुत होता है, तो नेचर उसके चेहरे पर नशा दिखाई देता है, उसको कोई टेंशन वेंशन नहीं होता है, कुछ भी होता रहे, पैसा है तो पैसा फेंक, तमाशा दे कहते हैं ना। तो हमारे पास भी कितना धन है, ज्ञान धन। बाबा ने कहा हुआ अनेक बार, कई मूल्य में कहा बाबा ने कि जहां ज्ञान धन माना बहुत परिपूर्ण है, जो आत्मा ज्ञान धन से परिपूर्ण है, वहां उनके पास दूसरा धन भी स्वतः पीछे खींच के चला आएगा, कमी नहीं गई उनको, स्थूल धन भी स्वतः आएगा, तो वो आत्माएं संतुष्ट रहेंगी। तो ज्ञान धन को हमको ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना है, क्योंकि मन के अंदर अनेक प्रकार के संकल्पों का भी खजाना भरा हुआ है, व्यर्थ के संकल्पों का। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करनी है बाबा ने कहा, इसलिए जमा करो और क्या करो, बांटो, बांटने से बढ़ेगा। हाँ, अपने आप छलकेगा वो रुक ही नहीं सकता है है ना। वैसे भी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बाबा साकार मूल्य में भी कहते हैं जिस चीज की कमी है उसका दान करो, है ना। तो हमारे में अगर ज्ञान की कमी है तो पहले ज्ञान अर्जित करो फिर दान करो उसको। और दान करने के बहुत तरीके, आजकल तो व्हाट्सएप भी बहुत है, अगर कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं व्हाट्सएप में डाल दो, कोई तो एक बढ़ेगा इतने ग्रुप बन गए हुए हैं। तो दान करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो यह है कि ज्ञान धन की कमी है तो भी हम दृष्टिग्रस्त होते हैं। पुराने संस्कार आक्रमण तभी करते हैं जब हमारे में उनको पार करने की शक्ति नहीं है, उनका सामना करने की शक्ति नहीं है, उनसे जीत पाने की शक्ति नहीं है, तो हम डिसाल्टेड हो जाते हैं। और डिसाल्टेड कहां हो जाते हैं जब हम हैं जी रक्त, हाँ रक्त की चाल धीमी हो जाती है, रक्त में थक्के हो जाते हैं, मोटा हो जाता है, तो भी हार्ट फेल होते हैं। और होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, किसी से कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं, चाहे वो साधनों के रूप में या चाहे पुरुषार्थ के रूप में, तो अच्छा अंदर ही अंदर करना भी हम इनसे आगे कैसे जाएं, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीजों की तुलना स्थूल रूप से हम तुलना करना शुरू कर देते हैं कि इसके पास ये है हमारे पास ये है, लेकिन जो हमको मिला उसके हम गुण गाएं, उसका हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि फिर भी हमारे पास वो चीजें हैं जिनके कारण हम जीवन में चल सकते हैं। जीवन को चलाना तो है ना, कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम कभी यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की चीज दूसरे के पास में वो चीज है वो मेरे पास नहीं है, उसको देख के भी असंतुष्ट रहते हैं, तुलना करते हैं। तो कंपैरिजन दृष्टिकोण भी हमको कहीं ना कहीं दिल शिकस्त ना कर दे, वो भी हमको हार्ट फील ना कर दे। और नेक्स्ट है बाबा से हमारा जब कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहता है तो भी हम दिल शिकस्त होते हैं, अर्थात जब हम रूरुआन नहीं करते हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। बताया ना उस दिन 10 बातें, समय क्या, समय क्या कह रहा है बाबा से रूरुआन, समय किस लिए मिला हमको रूरुआन करने के लिए। तो कंपैरिजन कम्युनिकेशन, और फिर हमारा कनेक्शन भी ठीक नहीं हो पाता, असंतुष्टता का भाव पैदा रहता है, तो भी हमारा दिल शिकस्त के चांस बने रहते हैं, तो हमारा खून मोटा हो जाएगा, हार्ट अटैक का भी हो सकता है। ज्ञान का कलेक्शन होना, ज्ञान एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, बाबा ने तब करेक्शन होगा, बाबा ने कहा ज्ञान की बूंद हमेशा टपकती रहनी चाहिए, कलेक्शन करेक्शन और फिर कनेक्शन होगा। पहले हम ज्ञान को कलेक्ट करेंगे, फिर स्वयं की करेक्शन करेंगे और हमारा कनेक्शन लग जाएगा, और कनेक्शन लग गया तो फिर सीधा पार हो जाएंगे हम। और दिलचस्प क्यों होते हैं विठल भाई, हाँ फिर एक है बीती बातों को हम पकड़ के बैठते हैं। जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जिनको जिन्होंने हमको बहुत धक्का दिया, चाहे वो रिश्तेदार हमको धोखा देके चले गए, कोई ऐसी बात बोल के चला गया, बोलने वाला चला गया, 10 साल बोला है, वो अपने मौज से जिंदगी जी रहा है, लेकिन हमने उसी बात को पकड़ के रखा हुआ है। चाहे अपने जीवन की जो बताया असफलता जो हो गई ना, कल वाली बात भूल जाने की है, कल हमारा मान लो किसी से टकराव हो गया, अब हो गया तो हो गया, काम खत्म हो गया, उसमें क्या करने का, अब जो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, वो तो बीत चुका है, हमारे यहां से अब सांप निकल चुका है और लिखकर को हम पीटते रहे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, चीता आके चला गया, उसको बार बार देखते रहे उसे कुछ होने वाला थोड़ा नहीं है, वो तो आके चला गया तो जो बात बीत गई वो बीत गई, लेकिन फ्यूचर के हम सतर्क रहे, वो अपना किसी को खा पी के भी चला गया है, वो अपना पेट भर के बैठा हुआ है जंगल में। तो इसी तरह से बीती बातों को पकड़ के नहीं बैठ जाना, स्वयं के साथ भी कुछ भी होता है उठो और फिर चलो, उठो और फिर चलो, उठो और फिर चलो, आखिर तो भगवान भी रहम दिल ही है ना, कल था ना तुम रहम दिल बाप के बच्चे मास्टर रहम दिल हो, तो उसको रहम क्यों नहीं आएगा, वो है ही रहम का सागर है, उस तो आएगा ना, इतने साल से इतने समय से बच्चा लगा हुआ है, पूरा 200 नाखूनों का जोर लगा के लगा हुआ है, कुछ नहीं हो पा रहा है, आकर तो उसको अवतारित होना पड़ेगा, आगे खड़ा, और वो होता भी है अवतारित, वो तो अंग संग उसकी अनुभूति होती है। जब हम अपने ऊपर थोड़ा सा भी अटेंशन रखते हैं बीती बातों को भूल जाते हैं, और बीती बातों को भूलने की वो ताकत देता है, फिर बिना उसकी ताकत के बिना मदद के छोड़ने वाला नहीं है, हाँ गारंटी देता हूं, तुम सारा दिन लगे रहे हो पुरुषार्थ में लगे रहो, शाम तक स्थिति हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। उस दिन बताया था ना मुरली में, मुरली का लास्ट पैराग्राफ था पिछले संडे को, 3-4 बार मुरली पढ़ो कोई ना कोई आपको उसमें विधि मिल जाएगी, कुछ ना कुछ टचिंग हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन है, मन एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसे दिल शिकस्त होने के अनेक प्रकार के कारण हैं, हार्ट फेल होने के कारण। तो हमको इस ब्राह्मण मार्ग में किसी भी हालत में स्वप्न में भी हार्ट फेल नहीं होना है, हार्ट ही भगवान को दे देना है, फेल होने की जरूरत नहीं होगी। दिल में दिलाराम को बसा के रखो ना, क्यों फिर फेल होगा वो। और सच में वो हार्ट अगर हमारा दिल के इस शरीर का भी हार्ट कमजोर है, अगर इस हार्ट में भगवान को बिठा लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। और होता है सचमुच बीमारियां राजयोग से ठीक होती हैं, लेकिन उनका हम वर्णन नहीं करें। स्वयं के ऊपर जो भी हमारे अंदर छोटी मोटी सूक्ष्म बीमारियां स्थूल बीमारियां भी हैं शरीर की, उनके हमको स्वयं प्रयोग करना है, करते जाना। और मन में बहुत शक्ति है, जो हम दादी जानकी में देखते थे ना, अभी अभी बीमार है अभी भी क्लास कराने आ जाते थे। डॉक्टर लोग भी अचंभा करते थे, हैरान होते थे ये क्या है, इतने साल की दादी है और बीमारियां। हालांकि बीमारी जाती थोड़ी नहीं, लेकिन मनोबल इतना मजबूत कि बीमारी ऊपर हावी हुई नहीं। दादी जानकी तो ऐसे लगते थे उन्होंने स्वेच्छा से शरीर छोड़ा हुआ है। तो उसी तरह से ज्ञान एक है, ज्ञान एक संजीवनी बूटी की तरह है जो हमारी बीमारियों को भी खत्म कर देता है, स्थूल बीमारियों को भी। तो ऐसे हमको खुद देखना है, एक स्वयं में लिस्ट बनानी है सारे दिन का, यही होमवर्क कि हम सारे दिन में कहां कहां हार्ट फेल होते हैं, उसका चिंतन करना है, जांच करनी है और उससे हमको मुक्ति पानी है। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे।